गाथा, रूप वही, रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं अमृतलाल नागर की लिखी कहानी धर्म संकट। शाम का समय था। हम लोग प्रदेश, देश और विश्व की राजनीति पर लंबी चर्चा करने के बाद उस विषय से ऊब चुके थे। चाय बड़े मौके से आई, लेकिन उस ताजगी का सुख हम ठीक तरह से उठा भी ना पाए थे कि नौकर ने आकर एक सादा लिफाफा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने खोल कर देखा, सामने वाले पड़ोसी राय बहादुर गिरिराज किशन, असली नाम गिरिराज कृष्ण, का पत्र था। कांपते हाथों, अनमिल अक्षरों और टेढ़ी पंक्तियों में लिखा था, माय डियर प्रताप, मैंने फुल्ली को आदेश दे रखा है कि मेरी मृत्यु के बाद यह पत्र तुम्हें फौरन पहुंचाया जाए। तुम मेरे अभिन्न मित्र के पुत्र हो, रमेश से अधिक सदा आज्ञाकारी रहे हो। मेरी निम्नलिखित तीन अंतिम इच्छाओं को पूरा करना। एक, रमेश को तुरंत सूचना देना। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके हाथों मेरे अंतिम संस्कार होंगे। मैंने उसके साथ अन्याय किया है। दो, फुल्ली को मैंने 5,000 रुपये दिए हैं और 5,500 रुपये बाकी चारों नौकरों को। नोट मेरे तकिए में रुई की परत के अंदर हैं। उसी में वसीयत और तिजोरी की चाबी भी है। घर में किसी को यह रहस्य नहीं मालूम। तकिया अब फौरन अपने कब्जे में कर लेना। घर के भंडार घर और संदूकों की चाबियां तिजोरी में हैं। रमेश के आने पर 5 पंचों के सामने उसे सौंप देना। तीन, अपनी वसीयत में यह शर्त रखी है कि मेरी पत्नी अगर मुझे माफ कर दे, और गलत ही सही, मगर जो पतिव्रत उस पर आन पड़ा है उसे साध कर रमेश को छोड़कर बाइज्जत यहां रहे, तो यह मकान और 10,000 रुपया उसे दिया जाए। लेकिन यह काम उसी हालत में होना चाहिए जबकि हम और तुम्हारे द्वारा नियुक्त मोहल्ले के 4 भले आदमी मेरी पत्नी की सच्चरित्रता के संबंध में आश्वस्त हो जाएं। पत्र पर 6 रोज पहले की तारीख पड़ी थी। मुझे यह समझने में देर ना लगी कि राय बहादुर साहब गत हो चुके हैं। पत्र मैंने बड़े बाबू के सामने मेज पर रख दिया। इंजीनियर साहब और प्रोफेसर साहब भी झुककर पढ़ने लगे। चाय बेमजा हो गई। हम सभी उठकर राय बहादुर साहब के यहां गए। उनका रोबीला चेहरा रोग और मानसिक चिंताओं से जर्जर होकर मृत्यु के बाद भी उनके अंतिम दिनों के असीम कष्टों का परिचय दे रहा था। मृत राय बहादुर के चेहरे को देखते हुए उनके साथ बीते इतने वर्षों की स्मृतियां मेरे मन में जाग उठी। राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन बीए उन हिंदुस्तानियों में से थे जिन्हें तकदीर की चूक के कारण इंग्लैंड में जन्म नहीं मिल पाया था। उनका रंग भी गोरा ना था, बल्कि गेहूं से काले की ओर ही अधिक झुकता हुआ था। फिर भरसक उन्होंने अपने आप को अंग्रेजनुमा ही बनाए रखा। गरीब हिंदुस्तानियों पर अकड़ दिखाने में वे सदा अंग्रेजों से 4 जूते आगे रहे। कई हिंदीवादियों ने उनसे शुद्ध नाम गिरिराज कृष्ण रखने को कहा, मगर वो उन्हें मूर्ख बतलाकर गिरिराज ही बने रहे। राय बहादुर गिरिराज किशन के नाम के साथ बीए जोड़ना भी नितांत आवश्यक था। सन 1923 में राय बहादुर गिरिराज अपनी बिरादरी के राय साहब दीनानाथ की बदौलत इलाहाबाद में छोटे लाट के दफ्तर में भर्ती हुए थे। अपनी अंग्रेज परस्ती और हाई क्लास खुशामत के दम पर राय बहादुर ऊंची कुर्सियों पर चढ़ बैठे। स्वराज्य होने पर आंतरिक कष्ट भोगने के बावजूद 3 वर्षों तक स्वराजी अफसरों, नेताओं और मंत्रियों की भी बाद अब खुशामत की। गिरिराज बाबू उन लोगों के सामने जिस प्रकार खुद दुम हिलाते, उसी प्रकार अपने सामने अपने माथहतों की भी हिलवाते थे। आजादी के बाद भी दफ्तर में अपना भला चाहने वाला कोई बाबू उनके आगे हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता था। और घर के लिए भी यही मशहूर था कि राय बहादुर की भैंस तक अंग्रेजी में ही डकारती थी। अगर कोई कसर थी तो यही कि लेडी गिरिराज के वास्ते अंग्रेजी का करिया अक्षर भी भैंस बराबर ही था। राय बहादुर गिरिराज पहली लड़ाई के जमाने के मॉडर्न आदमी थे। सुबह आंख खुलते ही घंटी बजाते सफेद कोट पतलून और साफे से लैस फुल्ली आया का लड़का घसीटे छोटी हाजिरी लेकर हाजिर होता। ठीक 8 बजे बड़ी हाजिरी पर बैठते, बेटी बेटा साथ होते, पर लेडी गिरिराज अंडा बिस्कुट समाज में कभी ना बैठी। परम कट्टर छूत पाक वाली ना होते हुए भी मांस मछली से उन्हें परहेज था। बशीरत चपरासी के बाप मुन्ने बावर्ची को हफ्ते में 2 दिन की ड्यूटी देनी पड़ती थी। घर के निचले हिस्से में विलायती रसोई थी, एक तरह से कहना चाहिए कि नीचे का पूरा घर ही विलायती था। वहां लेडी गिरिराज के बजाय फुल्ली आया का साम्राज्य था। फुल्ली पहले अंग्रेजी कोठियों में काम करती थी, अंग्रेजी ढंग से हिंदुस्तानी बोलती है, अंग्रेजी घर के कायदे जानती है, छोटी बड़ी हाजिरी लंच डिनर चाय सबका समय साधती थी। इसलिए गिरिराज बाबू के बाबू नियम से 2 पेक खाने से पहले चुस्कियों में मर्यादा करते थे। फुल्ली उसका इंतजाम भी बाखूबी कर देती थी, इसलिए आमतौर पर मजाक मजाक में ही मशहूर हो गया था कि राय बहादुर साहब से कोई काम करवाने के वास्ते बजाय लेडी गिरिराज के लेडी फुल्ली की सिफारिश ज्यादा पुरअसर होती है। वैसे राय बहादुर गिरिराज में किसी ने भी कोई ऐप की बात नहीं देखी सुनी थी। अगर ऐप था तो यही कि वे मॉडर्न थे, चुरूट मुंह में लगाए बगैर वे बात ही नहीं कर पाते थे। अगर कोई हिंदी सभा का चंदा मांगने आए तो उसे अकड़ कर कहते कि मॉडर्न जमाने में गवारू भाषा का उद्धार करना हिमाकत की बात है। धर्म के संबंध में पहले तो वे ये कहा करते थे कि यह ढोंग और पागलपन की वस्तु है, मगर बाद में उसे इंडियन कल्चर का एक सनातन रूप मानकर सहन कर जाते थे। गिरिराज साहब थोड़ा बहुत लेन देन का काम करते थे और उसकी बदौलत उन्होंने हैसियत भी बनाई। अच्छा मॉडर्न ढंग का मकान बनाया, उसका नाम दी नाइटिंगेल रखा, मोटर खरीदी, सदा 2-4 नौकर पाले, घर से लेकर दफ्तर तक घड़ी साध कर सबसे ड्यूटी करवाई। पत्नी को भी मिलने के वास्ते फुल्ली के द्वारा उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। लेडी इससे जल फूंक गई कि मैं फुल्ली से भी गई बीती हो गई। लेडी गिरिराज ने अपने फूहड़पन में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लांछन लगा दिया। राय बहादुर साहब सिद्धांततः और स्वभावतः अवैध रिश्तों से नफरत करते थे, इसलिए अपनी पत्नी के द्वारा झूठा लांछन लगाए जाने के बाद फिर उन्होंने कभी उनका मुंह ना देखा। बड़ी लड़की के विवाह के अवसर पर उन्होंने कन्यादान इसलिए स्वयं ना किया कि उन्हें पूजा के पटरे पर अपनी पत्नी के साथ बैठना पड़ता। इसके बाद 2 वर्ष में लेडी गिरिराज घुल घुल कर मर गईं। मगर मरी भी तो नियति के साथ, षड्यंत्र करके, ठीक उनके रिटायर होने के दिन। राय बहादुर गिरिराज को बहुत शिकायत हुई, अपने बेटी बेटी से कहा, तुम्हारी मम्मी को कभी टाइम का सेंस नहीं रहा, अगर मरना ही था तो कल सुबह मरती, परसों सुबह मर सकती थी, आज शाम को दफ्तर में मेरी फेयरवेल पार्टी हो जाने के बाद कभी भी मर सकती थी। जिंदगी में एड्रेस पाने का यह पहला मौका आया था, सो इस तरह तबाहो बर्बाद कर दिया, इडियट कहीं की। इसके बाद मरने वाली तो खैर मरी चुकी थी, मगर जो भी मातम पुरसी के लिए मुंह बिसोरते हुए आए उन्हें भी राय बहादुर साहब की डांट खानी पड़ी। जो कहता कि साहब सुनकर बड़ा दुख हुआ, उनसे कहते, आपको दुख करने की जरूरत क्या है, मुझे कोई दुख नहीं हुआ है, जो आदमी पैदा होता है उन सबको एक साथ फौरन मर जाना चाहिए, जाइए, मेरे यहां मातम पुरसी के लिए आने की जरूरत नहीं है। छोटी लड़की की शादी उन्होंने पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद पूर्व निश्चय के अनुसार ही की। स्वयं ब्याहने वाली लड़की और उनके पुत्र को इसमें आपत्ति थी, मगर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। कहा, आई हैव नो रिगार्ड फॉर योर मम्मी, शी वॉज ए परफेक्ट फूल। लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की, एक ICS के बेटे को अपना दामाद बनाया और बहुत कुछ दान दहेज देकर रिटायर होने के बाद भी रोब जतलाया। लड़का रमेश तब MA फाइनल में पढ़ रहा था, नाम ही तेज था, सदा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड रहा, MA के बाद IAS में बैठने वाला था। लड़की वाले अनेक व्यक्ति रमेश की मांग करने के लिए राय बहादुर की सेवा में आने लगे। राय बहादुर गिरिराज को अब मातहत क्लर्कों पर ना सही तो बेटी वालों पर ही चुरूट का रौब झाड़कर भरपूर संतोष मिल जाता था। दहेज के मामले में वे पक्के मॉडर्न थे, यानी 25,000 मांगते थे। एक आध पिछले जानकार ने दुहाई दी कि आप तो दहेज के विरुद्ध थे, उसको पुरानी प्रथा बतलाते थे, तो बोले, साहब जब मुझसे बड़े अफसर ICS आदमी यानी मेरे समधी साहब दहेज लेने को मॉडर्न प्रथा मानते हैं तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए हैं। न्यायत साइंटिफिक बात है कि आपको दामाद चाहिए और मुझे 25,000 रुपया। मेरा रमेश IAS पास करेगा। आप अपनी लड़की का फ्यूचर देखकर अगर इतनी रकम देना स्वीकार करते हैं तो बैठिए, वरना मेरी कुर्सी की गद्दी मैली मत कीजिए। वे ऐसी लड़की चाहते थे जो सुंदर हो, बीए हो, गाती नाचती हो, सीना पिरोना बुनना जानती हो, अंग्रेजी में फटाफट बात कर सके, अफसर किस्म के मॉडर्न मेहमानों की खातिर करने में तमीजदार हो, और ऊपर से उसका बाप नगद 25,000 रुपए भी दे जाए। बिरादरी के कई अच्छी हैसियत वाले बेटियों के बापों के चेहरे राय बहादुर गिरराज के चुरूट की अकड़ से धुआं धुआं हो गए। एक दिन उनके द्वारा नौकर रखाए गए पुराने माथत एक सजातीय बाबू देवी शंकर पधारे। गिरराज की महिमाओं का बखान करते हुए उन्होंने कहा, सर मैं आपकी चॉइस को जानता हूं और एक लड़की मेरी नजर में है। इन बाबू के साथ उन्होंने रीता को देखने का अवसर पाया। रीता राय साहब चमनलाल की इकलौती बेटी थी। राय साहब चमनलाल ने अपने जमाने में बड़े ऐश बड़े नाम किए। वे शहर की तवायफों के सरताज थे, रेस के घोड़ों के सरपरस्त थे और बड़े ही औला पौला आदमी थे। अपने जीवन काल में लाखों कमाए और लाखों फूके। एक लड़की हुई, उसे बड़े लाड से पाला पोसा पढ़ाया। हाईस्कूल तक रीता ने परीक्षाओं तथा वाद विवाद और नृत्य प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार प्राप्त कर अपने पिता को संतुष्ट किया था। राय साहब विधुर थे। रीता की एक विधवा मौसी उनकी लड़की की देखभाल करने के लिए उनके यहां रहती थी, जो सब तरह से उनकी ही हो गई थी। राय साहब ने आंख मूंद कर अपना घर अपनी रक्षिता साली को सौंप रखा था। बाद में राय साहब चमनलाल की जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्र पलटे। बड़ा घाटा आया, दिवालिया होने की नौबत आ गई। अपनी लड़की के वास्ते कुछ रकम बचाने की नीयत से उन्होंने एक बंगला अपनी साली के नाम से खरीदा और लगभग 1,00,000 रुपया नगद और जेवरों के रूप में बचाकर उसी के नाम से जमा करवा दिया। फिर राय साहब दिवालिया हो गए और जिस दिन उन्हें अपनी महलनुमा कोठी सदा के लिए छोड़नी थी, उस दिन उन्होंने गहरे नशे में अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर अपनी ही लीला समाप्त कर दी। राय साहब की मृत्यु के बाद मौसी सयानी हो गई और रीता अनाथ। लड़की देखने गए तो उसकी दो चोटियों में तितलियों जैसे रिबन देखकर राय बहादुर साहब के पेंशन प्राप्त जीवन में नई रस की गुलाबी आई। अनेक वर्षों का सोया हुआ मॉडर्न पत्नी का अभाव जाग उठा। लड़की रीता बातचीत में तेज, आंखें नचाने में बाकमल और हंसने में बिजली थी। देखकर लौटे तो रास्ते में ही देवी शंकर से बोले, लड़की तो अच्छी है और दहेज का भी मुझे कोई खास नहीं, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं इन सब मामलों में बड़ा मॉडर्न हूं। खाली एक प्रयोजन है कि क्या नाम के तुम्हारा क्या ख्याल है देवी शंकर, अभी तो मैं भी शादी कर सकता हूं। देवी शंकर राय बहादुर को घूरते लगे, मुंह पर खुशामद से हां के बजाय ना भला क्यों कर कहते। मौसी के लिए इससे बढ़कर कोई शुभ संवाद ना हो सकता था। 18 वर्ष की आयु की रीता 56 वर्षीय राय बहादुर गिरराज किशन की पत्नी बनी और इसके बाद की तमाम बातें अपने क्रम में बढ़ गईं। रीता ने प्रथम दिन से ही अपने पति से कोई संबंध ना रखा, हठपूर्वक अपने कमरे के अंदर बंद रही। राय बहादुर रुपये पैसे गहनों और खुशामदों की बड़ी बड़ी नुमाइशें लगाकर हार गए। फिर एक दिन फुल्ली ने बताया कि रमेश और रीता राय बहादुर द्वारा स्थापित संबंध को भूलकर परस्पर नया संबंध स्थापित कर रहे हैं। राय बहादुर आग हो गए। रमेश तब MA के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था। पिता ने क्रोध में अंधे होकर उस पर प्रहार किया और घर से निकाल दिया। रीता तब भी उनकी ना हुई। रमेश को 2 महीने बाद ही दिल्ली में कोई नौकरी मिल गई और उसके महीने भर बाद ही रीता राय बहादुर के घर से गायब होकर दिल्ली पहुंच गई। जाने से पूर्व एक अलबेला काम कर गई थी। मोहल्ले के 50 घरों में हर पते पर उसका लिखा पोस्टकार्ड उसके गायब होने के दूसरे ही दिन पहली डाक से पहुंचा। उसमें मात्र इतना ही लिखा था, बाबू गिरिराज कृष्ण ने मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाया था, मगर मैंने उन्हें कभी अपना पति ना माना और ना अपना धर्म ही दिया। विवाह से पहले मुझे बतलाया गया कि मैं उनके पुत्र को ब्याही जाऊंगी, तब से मैंने उनके पुत्र को ही अपना पति माना। इस घर में आकर भी उन्हें ही भगवान की साक्षी में अपने को सौंपा और अब मैं अपने पति के पास ही जा रही हूं। रीता के भागने से राय बहादुर बाबू गिरिराज किशन को इतना कष्ट नहीं पहुंचा था जितना कि उसके द्वारा भेजे गए इस सार्वजनिक पत्र से वे दुखी हुए। इसके बाद राय बहादुर का जीवन बदल गया। उनमें पूजा पाठ और आस्तिकता की भावना जागी, साथ ही अकेलापन भी हट पकड़ गया। पिछले 8 वर्षों में वे एक दिन भी अपने घर से बाहर निकलकर कहीं ना गए। लेन देन का काम करते थे वो भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया। मोहल्ले में किसी से भी संपर्क ना रखा। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, मगर मोहल्ले वाले उनकी हालत देखने पूछने भी ना गए। जाते तो मिलते भी नहीं। और अचानक मेरे पास अब ये पत्र आया। हम सभी मोहल्ले वाले एकाएक ये निर्णय ना कर पाए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। वैद्य जी और बड़े बाबू इस पक्ष में थे कि पुलिस को सूचना दे दी जाए और इस पत्र में लिखी हुई बातों का अमल भी कानून के हाथों ही हो, परंतु मैं तो मृत व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करने के पक्ष में था। इंजीनियर साहब भी मेरे ही मत के थे। बाद में सभी राजी हो गए। मोहल्ले के एक मित्र के पास रमेश के पत्र आया करते थे। उसी से पता लेकर तार भेजा गया जिसमें यह स्पष्ट लिख दिया गया था कि यदि कल प्रातः काल तक तुम स्वयं अथवा तुम्हारा पत्र उत्तर ना आएगा तो राय बहादुर की अंत्येष्टि क्रिया मोहल्ले वालों द्वारा ही पंचनामे से संपन्न कर दी जाएगी। सुबह 4 बजे तार का जवाब आया कि रमेश टैक्सी द्वारा दिल्ली से चल रहा है और सुबह तक पहुंच जाएगा। प्रातःकाल करीब करीब सभी मोहल्ले वाले राय बहादुर के घर पर उपस्थित थे। तभी टैक्सी दरवाजे पर रुकी। रमेश, रीता और 3 बच्चे उतरे। रमेश के मुंह पर तो सामाजिक लज्जा और संकोच की मलिन छाया थी, परंतु रीता का चेहरा सतेज और निर्विकार था। रीता के आने का संवाद पाकर अनेक स्त्रियां कौतूहलवश आ गईं। रीता ने राय बहादुर की लाश के पास अपनी चूड़ियां तोड़ी और मांग का सिंदूर पूछा। रमेश ने पिता का अंतिम संस्कार किया। स्त्रियां रीता से तरह तरह के प्रश्न करती थी, परंतु वो कोई उत्तर ना देती थी। क्रियाकर्म इत्यादि में राय बहादुर के सजातीय नाते रिश्तेदार आदि बहुत कम आए। ब्रह्म भोज में गरीबी से एकदम टूटे हुए ब्राह्मणी आए। किसी प्रकार क्रियाकर्म समाप्त हुआ। रमेश के वहां से चलने का समय आया। मैंने राय बहादुर के अंतिम पत्र के अनुसार संभ्रांत मोहल्ले वालों के साथ रीता रमेश को बुलाकर सबके सामने उनका वो अंतिम पत्र पढ़ा और वो तकिया जो मोहरबंद पेटी में मैंने रखवा दिया था खुलवाया। फुल्ली और नौकरों को राय बहादुर की इच्छानुसार रुपये दे दिए गए। राय बहादुर की अंतिम मांग पर रीता का निर्णय सुनने के लिए हम सभी उत्सुक बैठे थे। रीता बोली, मैं धर्म और ईश्वर के सम्मुख सच्चरित्र हूं। मैंने अपने तन मन से उन्हें सदा ससुर ही माना। धार्मिक कानून की जिस मजबूरी से उन्होंने मुझे अपनी पत्नी बनाया था उसे मैंने विधिवत उनकी लाश को सौंप भी दिया। उनकी चूड़ियां, उनका सिंदूर उन्हें सौंपा, लेकिन मेरी चूड़ियां, मेरा सिंदूर अक्षय है, कहकर उसने देर से अपने हाथ के नीचे दबी हुई रुमाल की पोटली को उठाया। उसमें हरी चूड़ियां थी और एक चांदी की डिबिया थी। चूड़ियां पहनी और डिबिया खोलकर रमेश की ओर रखते हुए बोली, जिन्होंने मेरी गोद भरी है उन्होंने मेरी मांग भी भरी है, लीजिए मेरी मांग भर दीजिए। रमेश ने रीता की मांग में सिंदूर की रेखा खींच दी। फिर रीता बोली, घर के संबंध में मुझे केवल यही कहना है कि अगर आप 5 पंच मुझे दुष्चरित्र मानते हो तो उसे धर्मशाला बना दीजिए। हम में से कोई दम थोक कर एकाएक ये नहीं कह पाया कि रीता दुष्चरित्र है। मैंने अनुभव किया कि सभी के मनों को इस प्रश्न से धक्का लगा था। अपने परंपरागत धार्मिक सामाजिक संस्कारों के कारण हम रीता को सच्चरित्रा मानने से भी मन ही मन हिचकते थे, पर क्या कहें, रीता हमारी हिचक पर एक बार कहकर उठ गई। उसने कहा, मुझे राय बहादुर साहब का घर और 10,000 रुपये पाने की इच्छा नहीं है। मेरे पति ने मुझे सुहाग की छांव दे रखी है, लेकिन मैं आपके सामने कसौटी रखती हूं। बोलिए, घर किसका है? घर को छोड़कर बाकी सब सामान के साथ रमेश, रीता, उनके बच्चे दिल्ली चले गए और हम अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पाए। घर की चाबी मेरे पास है, वो तोले डेढ़ का लोहे का टुकड़ा इस समय मेरे मन प्राणों का बोझ बना हुआ है। अभी आपने सुनी अमृतलाल नागर की कहानी धर्म संकट। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया था सुमन वैद्य ने।